बीबीसी इंडिया बोल 14 दिसंबर दिन शनिवार। सभी सुनने वालों को संदीप सोनी का नमस्कार। नागरिकता कानून में संशोधन के बाद पूर्वोत्तर राज्यों में भीषण असंतोष और हिंसा। क्या धर्म के आधार पर नागरिकता तय करना धर्मनिरपेक्ष संविधान की भावना के अनुरूप है? ऐसा कानून पास करके मोदी सरकार क्या हासिल करना चाहती है? यही है आज बीबीसी इंडिया बोल का विषय। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुफ्त फोन करें 1811 7000 और 1811 7001 पर। चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर, लेकिन थोड़ा ठहरेंगे और सुनेंगे पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार आदर्श राठौर से। भारत ने जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद फारूक अब्दुल्ला की हिरासत 3 महीने के लिए बढ़ा दी है। 82 साल के अब्दुल्ला को सुरक्षा कारणों का हवाला देकर हिरासत में रखा गया है। जिस कानून के तहत उन्हें बंद किया गया है उसके तहत किसी को भी बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक हिरासत में रखा जा सकता है। इससे पहले अब्दुल्ला को अगस्त में अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी किए जाने के दौरान घर पर नजरबंद किया गया था। अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला समेत भारत प्रशासित कश्मीर के कई नेता हिरासत में हैं। ब्रिटेन के नव निर्वाचित प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन अपनी पार्टी की जीत के बाद इंग्लैंड के उत्तर में उन सीटों का दौरा कर रहे हैं जहां उनकी पार्टी ने पहले कभी जीत हासिल नहीं की थी। लेबर पार्टी के गढ़ में जॉनसन की पार्टी को मिली इन सीटों के कारण ही कंजर्वेटिव पार्टी 30 सालों बाद इतनी बड़ी जीत हासिल कर पाई है। यहां पर बोरिस जॉनसन ने कहा कि मात्र ब्रेग्जिट ही उनका लक्ष्य नहीं है बल्कि वो सभी का जीवन बेहतर बनाना चाहते हैं। हमारा काम इस देश के लोगों की सेवा करना है, इसलिए हमारी और लोगों की प्राथमिकताएं एक ही हैं। हम ब्रेग्जिट तो करेंगे ही, मगर साथ ही नेशनल हेल्थ सर्विस, एजुकेशन, सुरक्षित माहौल, बेहतर अस्पतालों और देश के उज्जवल भविष्य को लेकर किए गए वादों को भी पूरा किया जाएगा। ये थे ब्रिटेन के नव निर्वाचित प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के शब्द। उत्तर कोरिया ने एक परीक्षण किया है जिसे उसने परमाणु हथियारों से अपने सुरक्षा चक्र को मजबूत करने के लिए काफी अहम बताया है। हालांकि उत्तर कोरिया ने यह जानकारी नहीं दी है कि यह टेस्ट किस तरह का था। यह टेस्ट सोहे सैटेलाइट सेंटर में एक हफ्ते में किया गया दूसरा परीक्षण है। उत्तर कोरिया ने पिछले साल दावा किया था कि इस परीक्षण केंद्र को पूरी तरह से निष्क्रिय कर दिया जाएगा। उत्तर कोरिया ने 1 साल तक सभी परीक्षण रोक दिए थे। इस दौरान उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन और अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 2 मुलाकातें भी हुई थी, मगर वार्ता बेनतीजा रहने के बाद मई में फिर से उत्तर कोरिया ने परीक्षण शुरू कर दिए थे। सूडान के पूर्व राष्ट्रपति ओमर अल बशीर के खिलाफ चल रहे भ्रष्टाचार के मुकदमे की सुनवाई के दौरान उनके समर्थकों ने फैसला सुनाए जाने से ठीक पहले हंगामा किया। कोर्टरूम में प्रदर्शन कर रहे लोगों ने नारे लगाए कि ये मुकदमा राजनीति से प्रेरित है। इन्हें अदालत से बाहर निकालने के बाद कोर्ट ने अल बशीर को सामाजिक सुधार केंद्र में 2 साल रहने की सजा सुनाई। बशीर के खिलाफ हुए प्रदर्शनों का नेतृत्व करने वाली सूडानीज प्रोफेशनल एसोसिएशन की प्रवक्ता डॉक्टर सारा ने कहा, हमें खुशी है कि पूरे सूडान ने ये मुकदमा देखा और दुनिया को भी पता चला कि उमर अल बशीर ने कितना भ्रष्टाचार किया है। हालांकि ये मुकदमा मुख्य आरोप पर नहीं था। उमर के खिलाफ नरसंहार, दरफुर में युद्ध और 1989 में सैन्य तख्ता पलट के भी आरोप हैं। इसलिए हम चाहेंगे कि आगे असल मामलों पर मुकदमे चलें। ये थे सूडानीज प्रोफेशनल एसोसिएशन की प्रवक्ता के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। ताइवान की पुलिस ने मुख्य विपक्षी पार्टी कॉमिंगतांग के दफ्तर के बाहर बम लगाने वाले एक संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया है। कॉमिंगतांग की बिल्डिंग में बम लगाने के बाद पुलिस ने इस संदिग्ध को उसके अपार्टमेंट तक ट्रेस किया। 10 घंटों तक गतिरोध बने रहने के बाद पुलिस ने इमारत में घुसकर संदिग्ध को पकड़ा। इस दौरान गोलियां चलने की भी आवाज आई। विपक्षी कॉमिंगतांग पार्टी चीन के साथ बेहतर रिश्तों की पक्षधर है जो ताइवान को अपना भाग मानता है। अगले महीने ताइवान में राष्ट्रपति चुनाव होने जा रहे हैं। न्यूजीलैंड में पुलिस ने कहा है कि अचानक फटे ज्वालामुखी की चपेट में आकर मारे गए लोगों के शवों की तलाश के लिए रविवार को फिर से अभियान चलाया जाएगा। जिस समय यह ज्वालामुखी फटा था लगभग 50 लोग इसे देखने वहां पहुंचे हुए थे। अभी तक मरने वालों की संख्या 15 तक पहुंच चुकी है। कई लोग अभी तक गंभीर रूप से घायल हैं। बीबीसी समाचार।
नेता बोले,
अफसर बोले,
पैसा बोला,
बंदूक बोली,
अभिनेता विलेन बोले,
नहीं बोल सके तो बस आप।
अब इंतजार खत्म, जुबान पर लगे ताले खोल,
बीबीसी इंडिया बोल।
स्वागत है आपका बीबीसी इंडिया बोल में, मेरा नाम है संदीप सोनी। कार्यक्रम का विषय आप जानते हैं, नोट कीजिए हमारे टोल फ्री नंबर्स 1811-7000 और 1811-2-7001। चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर, स्वागत है आपका, और स्वागत दुनिया भर में हमें सुन रहे तमाम श्रोताओं का। श्रोताओं, बीबीसी इंडिया बोल में आज हम चर्चा कर रहे हैं नागरिकता कानून में किए गए संशोधन की, जिसका पूर्वोत्तर राज्यों के साथ साथ भारत के कुछ अन्य राज्यों में भी विरोध किया जा रहा है। इस कानून से भारत के तीन पड़ोसी देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले हिंदू, जैन, पारसी, ईसाई, बौद्ध और सिखों को भारत की नागरिकता दिए जाने का रास्ता साफ हो गया है। लेकिन भारतीय संविधान का हवाला देते हुए इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में ये कहते हुए चुनौती दी गई है कि मुसलमानों को इस कानून में अलग रखना उनके साथ धर्म के आधार पर भेदभाव करना है, जिसकी अनुमति भारत का संविधान कतई नहीं देता। इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत के मुसलमानों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, भारतीय मुसलमान सुरक्षित हैं और हमेशा सुरक्षित रहेंगे। लेकिन संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार आयोग ने भी भारत के नागरिकता संशोधन कानून पर चिंता जताई है और बुनियादी रूप से इसे भेदभाव करने वाला कानून माना है। चर्चा में श्रोताओं को शामिल करने से पहले वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर, आपकी ओर मुखातिब हो रहा हूँ। आप वर्षों से संसद के गलियारों में आते जाते रहे हैं, आपने भारतीय संसद में कई कानून बनते और लागू होते देखे हैं, नागरिकता संशोधन कानून पर आपकी क्या राय है?
देखिए, जितना बहस मैंने देखा पार्लियामेंट के अंदर भी इस बिल को लेकर जो आज एक्ट बन गई है, और बाहर भी जो हुआ है, मुझे लग रहा है कि इसमें ह्यूमैनिटेरियन साइड को ना देख के इसमें ज़्यादा राजनीति हो रही है और ज़्यादा भ्रम और डर फैला जा रहा है, क्योंकि वो ये कानून यहाँ के जो मुसलमान को लेकर नहीं है, वो भारतीय नागरिक शुरू से हैं और रहेंगे भी, कोई उनको हटा नहीं सकता। ये केवल उन लोगों के हैं जो पहले से आ चुके हैं, आज भी 20-30 साल से, 25 साल से, उससे ज़्यादा भी है, उनकी स्टेटस ऐसी रही है, कई कैंपों में पड़े हैं, तो उनको लेकर है। लेकिन जिस तरह सरकार ये कानून लाई है, जिस तरह बहस हुआ है, जिस तरह आप जो भय का माहौल जो जिस तरह पैदा किया गया है, जिसकी वजह से एक बड़ा डर चल गया है कि ये भारतीय मुसलमान के खिलाफ है, और इसकी लेकर जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, क्या आर्टिकल 14 के बारे में जिक्र किया गया पार्लियामेंट के अंदर भी, बाहर भी, आज सुप्रीम कोर्ट में भी इसकी पिटीशन में मेंशन की हुई है, इसको लेकर भी कई विचारें आए हैं। हमने देखा है कि बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स जैसे आपके हरीश सालवे, आयान मान सुंदरम, कई लॉयर्स, उन्होंने कहा कि नहीं, ये केवल जो यहाँ आए हुए जो रिलीजियस प्रोसिक्यूशन एक कैटेगरी बन गया, जो आर्टिकल 14 में आप कैटेगरी बना सकते हैं, उसमें केवल हिंदू नहीं है, ईसाई धर्म के हैं, सिख हैं, पारसी हैं, तो इस तरह इसकी आर्ग्यू करिए। मुझे लगता है कि इस समय ज़्यादा डर से हमें वंचित होना है, क्योंकि डर ऐसा चीज़ है जिसको लेकर हम देख रहे हैं कई इलाके में, असम में तो दूसरा प्रॉब्लम है, लेकिन बंगाल में खास करके जिस तरह हम वायलेंस देख रहे हैं इसको लेकर, वो दुर्भाग्यपूर्ण है।
बंगाल पे अभी हम चर्चा आगे करेंगे और जो आपने तर्क रखा उस पर भी बात करेंगे। उससे पहले कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे हैं दीपक जसरोटिया, इशारा कर रहे हैं शीशे के उस पार बैठकर कि श्रोताओं को कार्यक्रम में शामिल करना है। 3-4 श्रोता हमसे जुड़ना चाह रहे हैं, पहले श्रोता कौन है आज हमारे साथ?
मैं कुमारी प्रियदर्शनी बरेली उत्तर प्रदेश से दृष्टिबाधित बोल रही हूँ।
जी बहुत स्वागत है आपका।
सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो नागरिकता कानून आया है, इसमें पहले तो सभी को नागरिकता मिलनी चाहिए थी हर जाति धर्म के लिए, और नागरिकता कानून ही ये एक्चुअली पूरी तरह गलत है। ये तो 31,000 विदेशियों को भारतीय बना दिया गया, और इन लोगों को भारतीय नहीं बनना चाहिए था। हमारे तो अपने ही देश की जनसंख्या बहुत है, हमें दूसरे के देश के नागरिकों का क्या करना, और इसमें मुसलमानों को कोई स्थान नहीं दिया गया है और जाति धर्म के लोगों को स्थान दिया गया है। मेरे अपने विचार में कानून पूरी तरह गलत है और ये कानून पूरी तरह कैंसिल होना चाहिए, क्योंकि जाति धर्म के नाम पे किसी को भी नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए, और फिर हमारे यहाँ नागरिकों की कमी नहीं है, जिनके लिए नागरिकों की कमी हो वो दूसरे के देश के नागरिकों को नागरिकता दे के 31,000 की जनसंख्या को और अपने देश की नागरिकता दे के बढ़ाएं।
बहुत शुक्रिया कुमारी प्रियदर्शनी बरेली से हमारी पहली श्रोता थी। दूसरे श्रोता कौन है?
हेलो सर, मैं कार्तिक बोल रहा हूँ।
जी कार्तिक, कहाँ से बोल रहे हैं?
सर भोपाल से बोल रहा हूँ।
स्वागत है आपका।
जी सर, सर मैं ये बोलना चाह रहा हूँ सर, जो कैब लेकर आए सर, इसकी जरूरत क्या थी लाने की सर? पहले तो ये सर पहला पॉइंट, तो सर ये धर्म के लाए भी तो सर धर्म के आधार पर क्यों लेकर आए? दूसरा पॉइंट ये सर, लाना था सर सभी धर्मों को लेना था सर, इसमें एक ही धर्म को छोड़कर सब बाकी धर्मों को लिया गया, ऐसा क्यों हुआ सर?
कार्तिक हमारे दूसरे श्रोता भोपाल से, शेखर अय्या साहब मार्कंडेय काटजू सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हैं, उन्होंने पायनियर में एक आर्टिकल लिखा है, इसमें वो लिखते हैं कि बीजेपी को लगता है कि मुसलमान चुनावों में उसके खिलाफ वोट देंगे, उसे वोट नहीं देंगे, इसलिए उन्हें नागरिकता देने से मना कर दिया गया, ना मिलेगी नागरिकता ना कटेंगे बीजेपी के खिलाफ वोट। तो ये जो मार्कंडेय काटजू का तर्क है, इसमें कितना दम नज़र आता है आपको?
देखिए, बीजेपी और मुसलमान समुदाय के साथ क्या संबंध है वो अलग चीज़ है, लेकिन मुसलमानों को नहीं दिया जाएगा इस तरह कोई घोषणा ना सरकार की है ना पार्लियामेंट बहस में। अमित शाह बार बार कहे कि वैसे जिनको आना है, लेकिन सवाल ये रिलीजियस प्रोसिक्यूशन के धर्म के नाम पे किसकी प्रोसिक्यूशन हो रही है? अगर पाकिस्तान में अल्पसंख्यक जो हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई है, या अफगानिस्तान में हमने भी देखा है कई सिख तालिबान आने के बाद भाग के आए थे, तो और बांग्लादेश में आप जानते हैं कि लगातार वहाँ पे ये शेख हसीना आने के बाद काफ़ी माइनॉरिटी की सुरक्षा हुई है, लेकिन जो इस्लामिस्ट फोर्सेस हैं वो हमेशा माइनॉरिटीज टारगेट किए। और जो ये ऐसा नहीं है कि जो आने वाले के लिए दरवाज़ा खोल रहे हैं, जो यहाँ ऑलरेडी आ चुके हैं, लेकिन ये बात मुझे लगता है कि सरकार उस पर कहीं ना कहीं उतनी सक्सेस नहीं पाई है कन्वे करने के लिए कि यहाँ जो हमारे खास करके दिल्ली में ही 4 कैंप हैं, आपके जोधपुर में है, जैसलमेर में जो लोग हैं कोई। अच्छा, दूसरी बात है इनकी एक्यूरेट फिगर को लेकर भी है, कोई राज्य कह रहा है 25,000 है, कोई 30,000 कह रहा है, कोई 50,000 है, ये फिगर्स का भी बड़ा एक ये है कि भाई एक्यूरेटली कितने लोग हैं, इन लोगों के लिए क्या प्रॉब्लम है। कुछ लोगों के पास लॉन्ग टर्म वीज़ा की कागज़ है और कुछ लोगों के पास कुछ नहीं है। तो इसके अलावा जो दूसरे लोग भी आए हैं, दूसरे धर्म के लोग के आए हैं, वो क्योंकि सरकार की कोशिश है जो इलीगल माइग्रेंट है और रिलीजियस प्रोसिक्यूशन जो आ रहे हैं, ये दोनों का अलग है,
दोनों अलग अलग
अलग अलग चीज़ है। लेकिन जिस तरह आपके श्रोता अपने व्यूज़ रख रहे हैं, उनको मन में एक मुझे लगता है कि क्लियर ये नहीं हो पा रहा है कि ये कानून क्यों लाया गया, किसको कवर कर रहा है। तो मुझे लगता है इसमें सरकार को और भी क्लैरिफाई करना होगा, क्योंकि ये ज़्यादातर कन्फ्यूजन है इसको लेकर,
और ये एक तरह की नाकामी भी कही जाएगी सरकार की यदि ये कन्फ्यूज़न पैदा हुआ है जैसा कि आप कह रहे हैं। तो यदि इसमें और स्पष्टता होती तो शायद ये विवाद ही ना होता। अगले श्रोता को कार्यक्रम में शामिल करते हैं, फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कौन है इस समय हमारे साथ?
हाँ जी सर, मैं पूछन महाराष्ट्र से अरुण बगड़े बोल रहा हूँ। सर जी नमस्ते।
जी अरुण जी, बहुत स्वागत है आपका।
हाँ जी सर, मैं कहना चाहता हूँ ये शरणार्थियों के लिए है कानून, जैसे डरे हुए सताए हुए भारत में अपने जो विश्वास करके जो आ रहे हैं यहाँ पे लोग, उनके लिए कानून बनाया गया है ये। इसमें मुसलमानों को डरने की कोई चीज ही नहीं है सर।
बहुत शुक्रिया अरुण जी, बहुत शुक्रिया।
हाँ सर,
बहुत शुक्रिया जी। लगता है संपर्क टूट गया है। नई लाइन पर हैं आप अरुण जी? संपर्क टूट गया है। शेखर अय्या साहब, उर्दू का अखबार है मुनसिफ, हैदराबाद से छपता है। मुनसिफ ने 11 दिसंबर के अपने संपादकीय में लिखा है, मुसलमान भारत का अभिन्न अंग रहे हैं फिर भी उन्हें नागरिकता संशोधन कानून के दायरे से बाहर रखा गया। अखबार लिखता है कि भारत में मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव का ये एक और उदाहरण है और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में ये पहला कदम है।
मुझे लगता है कि मुसलमान के समाज में और जैसे अखबार की जिस तरह की विचार आप देख रहे हैं, ये इम्प्रेशन चला गया ये एक एंटी मुस्लिम मेजर है। देखिए, वहाँ से धर्म के प्रोसिक्यूशन किसकी हो रही है, वहाँ से कौन आ रहा है, और यहाँ के मुसलमान की मतलब ये सोचना ये हमारे खिलाफ है, हमको ये करने के लिए हमें वंचित किया जा रहा है, उनके प्रति तो नहीं है ये। लेकिन ये बात मुझे लगता है कि इतना अगर फैल रहा है इस बात पर ये हो रहा है, ये अपने आप को ही एक संकट में डाल रहे हैं अपने जैसे। अगर उर्दू अखबार जैसे अखबार इस तरह की इस बातों को ये करें, देखिए कौन सी उस कानून में है कि भारतीय नागरिकता उनसे छीन जाएगी जो मुसलमान है।
लेकिन शेखर साहब जैसा कि आप कह रहे हैं ये इम्प्रेशन जा रहा है, अगर
इम्प्रेशन जा भी ना रहा है, विपक्ष का कैंपेन भी ऐसे ही हो रहा है कि इसमें डर ज्यादा,
इम्प्रेशन जा भी रहा है, डर फैल भी रहा है, तो इसको दूर करने के लिए क्या सरकार ने मुनासिब कदम उठाए थे या इसकी पृष्ठभूमि तैयार की थी इस कानून को लाने की? क्या इस और जिस तरह से इसे पेश किया गया, जिस तरह से पारित हुआ, उसके तौर तरीकों को लेकर भी बहस होनी चाहिए कि ताकि
बिल्कुल होनी चाहिए। मैं मानता हूँ इस समय मुसलमान समाज के साथ, उनके जितने क्लर्जी के साथ एक डायलॉग शुरू होनी चाहिए, संवाद शुरू होनी चाहिए, क्योंकि अननेसेसरीली जब देखिए वो कानून को आप लीगली चैलेंज कीजिए वो अलग बात है, वो सुप्रीम कोर्ट में जो निर्णय आएगा वो अलग बात है, लेकिन ये डर जो चीज़ है, क्योंकि डर की वजह से देखिए जिस तरह प्रदर्शन हो रहे हैं, कई जगह हिंसा हो रही है, फिर उस हिंसा के फिर काउंटर हिंसा होंगे, फिर वही साइकिल शुरू हो जाएगा इस साइकिल से हम जानते हैं इसमें कौन ज़्यादा विक्टिम हो जाता है, फिर उसके राजनीतिक फायदा कौन उठाता है। तो ऐसी समय में मुझे लगता है कि सरकार की तरफ से भी एक लगातार संवाद होनी चाहिए, एक स्पष्टीकरण आनी चाहिए, इस कानून के बारे में और जानकारी होनी चाहिए, और इसका डिबेट मुझे लगता है पॉलिटिकल से ज़्यादा ह्यूमैनिटेरियन होनी चाहिए। अब उत्तर पूर्व में की भी आप देखिए वही सवाल है, उत्तर पूर्व की जो हालात है रही है पिछले 50-60 साल में, जितने घुसपैठ आकर वहाँ पे ऐसे तंग आ चुके, वो कह रहे किसी को नहीं आने चाहिए, तो वहाँ पे इतनी टोटली एंटी ये है कि भाई वो आउटसाइडर वाला हो, आउटसाइडर।
आपने पूर्वोत्तर का जिक्र किया, असम अकॉर्ड जो असम समझौता है उसकी डेडलाइन अलग थी कि बाहर के लोग किस तारीख से आ सकते हैं नहीं आ सकते, और अब जो नागरिकता संशोधन कानून है उसकी डेडलाइन उसमें अलग फिक्स की गई है। ये डेडलाइन का यदि ये इस तरह का फेर नहीं होता तो असम में इस तरह के विरोध प्रदर्शन भी नहीं होते।
नहीं, असम में शुरू से ही कह रहे हैं कि वो कट ऑफ, एक तो कट ऑफ की बात है उसको लेकर कन्फ्यूजन है कि असम अकॉर्ड में एक डेट है, उस हिसाब से ट्रिब्यूनल्स भी बनी है, फॉरेनर को डिटेक्ट करने की काम करने वाले हैं, इस बीच में एनआरसी आ गई, एनआरसी भी कई जो मतलब 19 लाख लोगों की उस पर वंचित हो गए जिनके पास कागजात ठीक से नहीं रहा करके आ गया। तो असम में जो प्रॉब्लम है ये सिटीजन अमेंडमेंट बिल या एक्ट ये ज़्यादा और डर फैला दिया और ज़्यादा गुस्सा का भी ये किया है, क्योंकि वहाँ के ज़मीन पर जो प्रेशर है, पानी सोर्सेस पे जो प्रेशर है, और वहाँ के जो इंडिजिनस हैं जिनके लिए इन्होंने सरकार ये इन्होंने कानून में ये कर दिया कि आप इनर लाइन परमिट के अंदर ये अप्लाई नहीं होगा, उसमें मणिपुर की भी शामिल कर लिया, और असम के ट्राइबल इलाके जो हैं शेड्यूल 6 उसमें भी इन्होंने उस कर दिया है, लेकिन बाकी ब्रह्मपुत्र वैली है खास करके अपर असम में, वहाँ पे बहुत गुस्सा इसीलिए है कि वो नहीं चाहते कोई सेटलर आए, वो हिंदू हो मुसलमान हो, कोई बांग्ला बोलने वाला कोई नहीं आना चाहिए, ये इनका।
असम में तो लोग कह रहे हैं कि उनकी रोजी रोटी का संकट है ये। 11 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी ने एक ट्वीट किया, उसमें कहा कि भारत के लिए ये एक लैंडमार्क डे है, खुशी हुई कि नागरिकता संशोधन बिल राज्यसभा में पारित हो गया, इस बिल से उन लोगों की पीड़ा खत्म हो जाएगी जो वर्षों से जुल्म, उत्पीड़न और अत्याचार का शिकार हो रहे थे। तो जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं मील का पत्थर, क्या वाकई ये कानून इतना सही तरीके से ड्राफ्ट हुआ है और सही तरीके से लागू हो पाएगा कि ये वाकई मील का पत्थर साबित हो?
देखिए कानून की लीगलिटी आप देखेंगे, मुझे नहीं लगता है कि सरकार की तरफ से इसकी लीगल पोजीशन को स्टडी न किए होंगे, और जिस तरह कुछ विश्लेषण हो रहा है जैसे हरीश सालवे जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट कह रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता उसमें इतनी लैकुना होगी या सुप्रीम कोर्ट उसको पूरा स्ट्राइक डाउन करेगी, मुझे नहीं लगता है पर्सनली।
सुभाष कश्यप जैसे भी नहीं, संविधान के जानकार हैं,
नहीं सुभाष कश्यप का ओपिनियन भी आप
जो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में ये कानून नहीं टिक पाएगा।
नहीं, वो देखिए अलग अलग विचार है,
जैसे हरीश सालवे का एक मत है, सुभाष कश्यप का भी दूसरा
नहीं,
मत
संदीप
है।
जी केवल कानून ठीक हो मतलब शब्दों को अगर हिसाब से देखा जाए वो लीगली वो बात नहीं है, उससे भी ज्यादा बात है कि, लेकिन हम ये डिबेट भी क्यों नहीं कर रहे हैं भाई, इतने सालों से अगर लोग धर्म पे नाम पे अत्याचार होके यहाँ आए हैं उनकी इतने सालों से हम क्यों नहीं दिए? क्योंकि नहीं सवाल ये भी आ रहा है ना भाई, इसलिए नहीं दिए कि क्योंकि हम हिंदू को देना नहीं चाहते, या हिंदू को, हिंदू रेफ्यूजीज को देना खराब चीज है? तो ये देखिए, ये बहस भी है, अभी अभी ज्यादा बहस इस तरफ सुन रहे हैं, जब उस बहस भी शुरू होगी तो आप फिर देखेंगे एक माहौल जिसमें ज्यादा पोलराइजेशन होगी और अंडरस्टैंडिंग कम होगी।
इस बहस में, चर्चा में कई आयाम है, लेकिन आप ये बात भी गौर कीजिए कि भारत के प्रधानमंत्री, भारत के गृह मंत्री और भारत की संसद के अधिकतर सांसदों की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं, क्यों विपक्ष को उन पर भरोसा नहीं है और क्यों भारत की आबादी के एक बड़े हिस्से को ऐसा लग रहा है कि उनके साथ अन्याय किया जा रहा है। यदि ये भावना है जो दिख रही है, तो ये भावना आखिर आई कहाँ से, कैसे आई?
उसका कारण मैं मानता हूँ कि लंबे समय से यहाँ पे एक वोट बैंक पॉलिटिक्स चल रहा है। अब डर हो रहा है कि कोई नई वोट बैंक पॉलिटिक्स शुरू ना हो जाए। बात साफ है, क्योंकि मैं पहले से कह आ रहा हूँ कि भाई ह्यूमैनिटेरियन हिसाब से जाइए आप। अगर लोग किसी धर्म का हो, जिस कारण से आए हो, अगर उनकी, अगर आज तक उनकी स्टेटलेस है, अगर वो हिंदू हैं या मुसलमान हैं, कोई भी हैं, तो उनके लिए हमने क्या किया है, उस दुख दर्द को हमने क्यों इतने दिन सहा है? और दूसरी तरफ केवल वोट बैंक, क्या एक नया वोट बैंक हो जाए? जैसे बंगाल में आपकी बात है कि जो हिंदू सेटलर्स आए उनको कागज पर नहीं हुआ, वो आज भी स्टेटलेस है, लेकिन जो मुस्लिम थे उनके लिए वोटर बन गए।
आपने बंगाल का जिक्र किया है, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता और आसपास के इलाकों में आज काफ़ी हिंसक घटनाएँ देखने को मिली हैं। कोलकाता में आज का जो घटनाक्रम रहा, उसके बारे में हमारे सहयोगी पीएम तिवारी और जानकारी दे रहे हैं।
पश्चिम बंगाल में नागरिकता कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का सिलसिला शनिवार को और भड़क उठा। प्रदर्शनकारियों ने हावड़ा जिले में एक रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर पर आग लगा दी। इसी जिले में कोना एक्सप्रेसवे पर कम से कम 15 बसें और पुलिस की एक जीप के अलावा फायर ब्रिगेड के इंजन में भी आग लगा दी गई। राज्यपाल जगदीप धनखड़ और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रदर्शनकारियों से शांति बहाल रखने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाने की अपील की। ममता ने कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की भी चेतावनी दी। उन्होंने दोहराया कि बंगाल इस कानून को लागू नहीं किया जाएगा, लेकिन बावजूद इसके विभिन्न इलाकों में जारी हिंसा और आगजनी पर अंकुश नहीं लगाया जा सका। रेलवे स्टेशनों पर तोड़फोड़, आगजनी और धरने की घटनाओं के बाद दक्षिण पूर्व रेलवे की लंबी दूरी की कई ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। इस वजह से यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। रेलवे ने पर्याप्त सुरक्षा नहीं मिलने तक ट्रेनों के संचालन से इनकार कर दिया है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि मुर्शिदाबाद और उत्तर 24 परगना जिले के अलावा हावड़ा जिलों से भी हिंसा की खबरें मिली है। मुर्शिदाबाद में नेशनल हाईवे 34 और अन्य सड़कों पर टायर जलाकर प्रदर्शनकारियों ने वाहनों की आवाजाही ठप कर दी। प्रदर्शनकारियों के मूड को देखते हुए राज्य में हालात सामान्य होने के आसार कम ही हैं।
शेखर अय्यर, ये तो कोलकाता की बात हुई और मुझे लगता है कि असम का भी हमें आज बताना चाहिए अपने श्रोताओं को कि आज वहाँ पर दिन भर कैसे हालात रहे और अभी इस समय वहाँ कैसे हालात हैं। गुवाहाटी में मौजूद हैं बीबीसी संवाददाता फैसल मोहम्मद अली, सुनिए वो क्या बता रहे हैं।
सुबह के वक्त में कर्फ्यू में ढील दी जा रही है, जैसा कि आज भी शनिचर के दिन उन्होंने सुबह में कर्फ्यू से लेकर शाम के 4 बजे तक ढील दी थी, फिर उसके बाद कर्फ्यू दोबारा लागू कर दिया गया। ब्रॉडबैंड भी तकरीबन समझिए कि 1-2 घंटे के लिए चालू किया गया था, लेकिन वो 16 तारीख के लिए बंद कर दिया गया है। बाकी शहर के जो हालात हैं, शाम होते ही आपको सड़क पे जगह जगह पुलिस घूमती नजर आती है, ये अनाउंसमेंट करते हुए कि कर्फ्यू लग गया और आप लोग अपने घरों में जाइए। पुलिस की नाकाबंदी आपको जगह जगह नजर आती है और लोग अपने अपने घरों में घुस जाते हैं। सन्नाटा, सारे जो बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट्स हैं वो बंद है, लोगों की कतारें जो है लंबी लंबी एटीएम के सामने लगी हुई है, जो पेट्रोल पंप है उसके सामने लोगों गाड़ियों की एक लंबी कतार लगी हुई है, और लगभग यही हालात एक बंद का समा जो है वो पूरे गुवाहाटी में नजर आता है। यहाँ का जो फिल्म बोर्ड है उसके चेयरमैन ने जो है वो बीजेपी के ही है, उन्होंने रिजाइन कर दिया है। यहाँ के स्पीकर ने यह तक कहा, अध्यक्ष ने, कि मुझे नहीं बोलना चाहिए लेकिन ये बेहतर कानून नहीं है। साथ साथ लोगों में जो है ये बात तो है कि वो डटे हुए हैं। आप ये देखिए कि जापान के प्रधानमंत्री आने वाले थे यहाँ, उनकी यात्रा कैंसिल हुई। अमित शाह नॉर्थ ईस्ट आने वाले थे आज, उनकी यात्रा कैंसिल हुई। तो राजनीतिक लपट भी कहीं ना कहीं उसकी दिख रही है। दूसरी तरफ यहाँ के जो छात्र संगठन है वो अडिग है इसको लेकर के।
शिखर अय्यर, आपने सुना पहले कोलकाता फिर गुवाहाटी, जिस तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, कहीं कम कहीं ज्यादा। एक मुहावरा है, गले की हड्डी बनना, जिसे ना उगलते बनता है ना निगलते बनता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि नागरिकता कानून में संशोधन का जिस तरह से विरोध हो रहा है, ये विरोध मोदी सरकार के लिए गले की हड्डी बन सकता है?
देखिए, अभी से ही जिस तरह प्रतिक्रिया हो रहे हैं और कानून व्यवस्था को लेकर जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं, ये तो बहुत गंभीर विषय है और मैं मानता हूँ केंद्र सरकार को भी सोचना होगा इसमें, और साथ साथ जो राज्य सरकार है जैसे बंगाल में, क्योंकि राजनीतिक जितना भी मतभेद हो, लेकिन ममता बनर्जी जैसे मुख्यमंत्री को भी सोचना है कि इसमें इसे पॉलिटिकली ना करके, देखिए आखिर में क्या बात क्या है, लोग मरना नहीं चाहिए, डैमेज नहीं होनी चाहिए पब्लिक प्रॉपर्टी के लिए। तो इसीलिए मुझे लगता है कि संवाद की आवश्यकता है, और उस संवाद ये ममता बनर्जी को भी करना है। आज हमने देखा है कि उन्होंने अपील भी की भाई वायलेंस नहीं होनी चाहिए, और असम में बात कम्प्लीटली डिफरेंट है, क्योंकि असम में जो चीज़ है ना वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। वहाँ वो केवल इनको नहीं चाहते, उनको नहीं चाहते, कोई वंचित हुए वो बात नहीं, वो बिल्कुल नहीं चाहते कोई सेटलर्स आए, क्योंकि असम अकॉर्ड भी बहुत लंबा 10 साल के आंदोलन के बाद किया गया था। और दूसरा अभी जो NRC को लेकर जो वहाँ पे जो विवाद खड़ा हुआ वो भी दिख दूसरा चीज़ है। तो मुझे लगता है असम सबसे अगर सेंसिटिव, अगर मैं मानता हूँ असम सेंसिटिव है और उसको बड़ी टैक्टफुली हैंडल करना होगा।
और इस समय 2-3 श्रोता हमसे और जुड़ना चाह रहे हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। कौन है इस समय हमारे साथ?
जी, मैं मोहम्मद गुफरान अंसारी बोल रहा हूँ।
जी अंसारी जी, कहाँ से बोल रहे हैं?
फारबिसगंज डिस्ट्रिक्ट बिहार से।
बहुत स्वागत है आपका।
जी संदीप जी, जी सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये नागरिकता संशोधन कानून जो है, ये सर ये तो मुस्लिम का कहीं नाम ही नहीं है सर। तो ये सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर किया गया, तो इस पे सुप्रीम कोर्ट को बहुत जल्द फैसला देना चाहिए सर, क्योंकि देश के बहुत राज्य जैसे आप अभी वहाँ के ही सुना रहे थे फैसल मोहम्मद अली और यहाँ के संवाददाता से, आपने जमीनी हालात जिस तरह से बयान किया हम लोगों के सामने में सर, ये बहुत दुख की बात है। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए सर, मुसलमान को भी इससे मतलब भारत का नागरिक ही मानना चाहिए।
बहुत शुक्रिया अररिया से अंसारी साहब, हमारे श्रोता थे। एक और श्रोता इस समय हमसे जुड़ रहे हैं।
हेलो
जी।
हाँ संदीप साहब नमस्कार।
जी नमस्ते,
मैं मोहन सिंह काजड़ा बोल रहा हूँ, काजड़ा ही धनी जिला झुंझुनू राजस्थान से।
बहुत स्वागत है आपका।
मेरे कहने का मतलब है साहब, जो ये जो इतने आदमियों को ये जो अधिकार यहाँ रहने का दिया है ना, तो इसमें किसी को तकलीफ क्या है? फिर दूसरी बात, कुछ लोग बोलते हैं इस जाति को नहीं दिया, इसको बांग्लादेश पाकिस्तान है, उन्होंने हमारे देश के किसी भी आदमी को मतलब शरण दी कि कोई नागरिकता दी? फिर दूसरी बात के वहां पर लोग हैं वो ये शिकायत करते हैं आने वाला हमारे साथ जुल्म होता है, हमारी बहन बेटी सुरक्षित नहीं है, हम सुरक्षित नहीं है, हम घटते मतलब जा रहे हैं, और ऐसी भाषा मतलब भारत में 30 करोड़ मुसलमानों के लिए बिल्कुल नहीं है, तो बांग्लादेश पाकिस्तान को भी सर सोचना चाहिए। एक दूसरी बात के ये नागरिकता तो इनको मिल गई, पर आप हमारी नागरिकता छीन रहे हो। कल हमने मतलब सुना BBC मतलब बंद हो रही है 31 जनवरी से, तो मैं तो भूख हड़ताल पर
नहीं 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 हम रेडियो की जगह आप डिजिटल में फोकस करेंगे और डिजिटल माध्यम से आपका और हमारा संपर्क इसी तरह बना रहेगा। एक और श्रोता को कार्यक्रम में शामिल करते हैं। जी
हेलो। जी जी, मैं मोहम्मद जैद हापुड़ उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ।
बहुत स्वागत है
जी। आखिर हमारे साथ क्यों किया जाता है मुसलमान? हम इस देश के नागरिक नहीं है?
बिल्कुल है, बिल्कुल है
सर। हम रोना देखने रोना भी आता है, वीडियो देखते मुसलमान पे ऐसे टॉर्चर हो रहे हैं, हम मुसलमान नहीं है, बताओ।
ये विषय हम विषय से ना भटकें तो बेहतर होगा। शेखर साहब, क्या भारतीय लोकतंत्र में जिस पार्टी को बहुमत मिला है वो कुछ भी कर सकती है, जो चाहे कानून बना सकती है, या सुप्रीम कोर्ट उस पर अंकुश लगा सकता है?
नहीं, सरकार जो भी कानून बनाए तो वो तो पावर है सुप्रीम कोर्ट को रिव्यू करने के लिए, वो देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत है कि नहीं है, क्या विषय है, और कम से कम तो राजनीति से तो कोई असर नहीं होगा उसमें। और मुझे जो लग रहा है कि जिस तरह की रिएक्शंस आ रहे हैं, इसमें इतनी राजनीति जुड़ चुकी है, इसलिए भ्रम फैला गया है, और इसीलिए इस समय मुझे लगता है संवाद की बहुत ज़रूरत है।
जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला आएगा तो सुप्रीम कोर्ट क्या देखकर तय करेगा कि ये सही है या गलत है?
केवल यही देखेगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो भी है, जो प्रावधान हैं, उसके नज़रिया में ये कानून कहाँ बैठता है, इसमें कोई किसी के साथ भेदभाव हुआ है कि नहीं हुआ है, किसी को वंचित किया गया कि नहीं किया है, और ओवरऑल ये क्या है?
यानी अब सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि इस कानून की वैधता कितनी है नहीं है। इसी के साथ घड़ी की सुइयां कह रही हैं हमें अपनी चर्चा को यहीं विराम देना होगा। वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर और तमाम श्रोताओं का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने अपनी भागीदारी से इस चर्चा को आगे बढ़ाया। अगले हफ्ते फिर एक ज्वलंत विषय पर चर्चा के लिए इंडिया बोल में हम हाजिर होंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, शुभरात्रि।